ओम शांति। बाबा के डबल विदेशी बच्चे बहुत लाडले हैं, कितने प्यार से बाबा ने आप सबके लिए ज्ञान सरोवर बनाया और इस ज्ञान सरोवर में आप सभी एकांतवासी बनकर तपस्या कर रहे हो। शांति वन में कितनी भीड़ है, 21,000 से भी अधिक भाई बहने पहुंचे हैं। चारों तरफ से बहुत भीड़ लगी हुई है और उतने में आप सभी यहाँ पर बाबा के साथ नया साल भी मना रहे हो, तपस्या भी कर रहे हो और दादी का, विशेष जानकी दादी का आप सब पर बहुत ध्यान है। कल मुझे कहने लगी कि तुमने डबल विदेशियों का क्लास नहीं कराया है, जाओ उनके पास। दादी यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत लोग मिलने वाले आते हैं, तो दादी कहती नहीं, ऊपर मधुबन में पांडव भवन में ज्ञान सरोवर में विदेशियों को विशेष पालना की जरूरत है। तो दादी यहाँ से होके गई थी परसों, तो मुझे कहने लगी आपको जाना है, तो आज आपके बीच आए हैं। विशेष नया साल 2014 अभी शुरू हो रहा है। 2013 में बहुत अच्छी बाबा ने सेवाएं कराई, चारों ओर देश और विदेश में बहुत वैरायटी सेवाएं हुई हैं। 14 में बाबा को कौन सी कमाल करनी है, सबसे पहले अभी बाबा का विशेष इशारा है बच्चों की मनसा बहुत बहुत शक्तिशाली चाहिए। समय आ रहा है जो वाचा सेवा का समय नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। देश और दुनिया में प्रकृति भी अपनी हलचल कर रही है। रोज विश्व के समाचार पर अगर हम नजर डालते हैं तो कितनी स्थानों पर कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। चारों तरफ से प्रकृति अपना हलचल कर रही है और आपस में कितना तनाव बढ़ता जा रहा है। देश देश के साथ आपस में झगड़ने के लिए तैयार हैं। पांचों तत्व प्रकृति के और माया के पांचों विकार फुल फोर्स में अपना चारों तरफ से जलवा दिखा रहे हैं। ऐसे समय पर बाबा अपने बच्चों को बहुत बहुत शक्तिशाली देखना चाहते हैं। शरीर से भी शक्तिशाली तो हों, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है मनोबल की। मन अगर कमजोर है तो कोई भी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। तो आप सभी बाबा के घर में मन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए आते हैं। इतना शक्तिशाली मन हो जाए जो ये बातें परिस्थितियां बहुत छोटी छोटी दिखाई देने लगे। जब कोई शरीर से भी शक्तिशाली होते हैं तो उनके आगे कोई भी प्रकार का हवामान जलवायु उन्हें बीमार नहीं करती है, पार कर लेते हैं। ऐसे ही बाबा चाहते हैं मेरे एक एक बच्चे के मन की शक्तियां इतनी अच्छी हों, शक्तिशाली हों, जो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि कलयुग के अंत में हरेक को अपने अपने सब हिसाब किताब चुक तो करने हैं। जो हम सभी ने इस 84 के चक्र में पार्ट बजाया है, हिसाब किताब बनाए हैं, कलयुग के अंत में इन्हें सब चुक तो करना है। आज भी बाबा ने कहा, जब तक तुम बच्चे संपूर्ण पावन नहीं बनोगे तब तक मैं वापस नहीं ले जाऊंगा। मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें पूरा ही पावन बनना पड़ेगा। तो जो हम सबने शरीर के साथ, अनेक संबंधों के साथ खेल खेलते खेलते हिसाब किताब बना लिए, यही समय है जब उसे चुकतो करना है। या हम योग बल से चुकतो करें या भोगना से। शारीरिक भोगनाएं भी होती हैं, मानसिक पीड़ाएं भी होती हैं। कईयों को शरीर अच्छा होता है लेकिन मन जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है। कोई छोटी सी बात हो जाती है तो उसको सोच सोच करके डिप्रेशन में चला जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे बातें तो बहुत बड़े रूप में आएंगी। कलयुग का अंतिम समय है, इसलिए हर बात अति में जाएगी। आप बच्चों की स्थिति, आप बच्चों की मनसा इतनी अच्छी शक्तिशाली हो जो बातों को सेकंड में पार कर ले। नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, बात आई है खत्म हो जाएगी। मुझे दिल से कष्ट नहीं होना है, मुझे निराश उदास नहीं होना है। तो सभी ने बाबा के घर में अपने मन की शक्तियों को बढ़ाया है, शक्तिशाली बन गए। क्या कहेंगे जो हिंदी समझ रहे हो तो हाथ उठाओ, बन रहे हैं सभी। अच्छा, बहुत से लोग समझ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ट्रांसलेशन भी आपको अच्छी मिल रही है। तो मन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए मैं कुछ बातें आपको बताता हूं, जिन पर अगर ध्यान है तो मन बहुत बहुत पावरफुल बन जाएगा। पहली बात बाबा की, जो हम मुरली सुनते हैं उसमें बाबा हम सबको सकारात्मक चिंतन देते हैं। मन को अच्छा चिंतन, अच्छे विचार, सत विचार मिलते रहें तो मन शक्तिशाली हो जाता है। मन की कमजोरी का मूल कारण व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन है, अधिक सोचना। कोई भी बात हो गई, अगर अधिक सोचने लगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो असंभव है, तो सोचते सोचते मन कमजोर हो जाएगा, थका हुआ मन निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे नथिंग न्यू, सोचो ही नहीं। हमारी दादी कहती हैं, डोंट थिंक, तो मैं हंसने लगता हूँ, डोंट थिंक, सोचो ही नहीं। सोचना तो पड़ेगा कि नहीं, लेकिन जो काम का नहीं है वो नहीं सोचो। जो आपके हमारे मतलब की बात नहीं है, हो रही है, मान लो आपके सोच के अनुसार नहीं हो रही है, आपकी विचारों के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है, तो आपके विचार उसमें अधिक न चले, इसका पार्ट है। तो जितना सकारात्मक चिंतन करने का अभ्यास हो जाएगा, जितना सकारात्मक दृष्टिकोण बन जाएगा, जितना साक्षी दृष्टा स्थिति में हम रहेंगे उतना मन हमारा अपने आप शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे विस्तार में नहीं जाओ। बहुत विस्तार हो रहा है, सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है, यज्ञ का भी बहुत विस्तार हो रहा है। पहले पहले आप सब आते थे, जो 15 साल 20 साल पहले वाले बाबा के बच्चे हैं वो जानते हैं कि कितना छोटा सा घर था, कितना छोटा परिवार था, बाबा कैसे प्यार से मिलते थे, एक एक बच्चे से आधा आधा घंटा 15-15 मिनट बात करते थे। वो दृश्य देखा है किसी ने? पुराने कोई ऐसे हैं बैठे? नहीं है, एक दो हैं, देखा है ना। जब बाबा ओम शांति भवन में आते थे तो एक एक बच्चे को 10 मिनट 15 मिनट स्पेशल मिलते थे और बहुत वरदान देते थे। वो दिन कितने प्यारे थे। और आज बाबा की दृष्टि भी नहीं मिलती, इतनी वृद्धि हो गई, इतने बच्चे आ गए 20,000-25,000 के ग्रुप में, टीवी पर ही देख पाते, सामने भी नहीं पहुंच पाते, दृश्य बदल गया, समय परिवर्तन हो गया। ये नहीं सोच सकते ऐसा क्यों हुआ, ये वृद्धि हो गई। बाबा के बच्चों की वृद्धि हो तो खुशी की बात है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन वही अपेक्षाएं नहीं रखनी है। बाबा वैसे ही मिले, वैसे ही बात करे, वैसे ही दृष्टि दे। बाबा कहता बच्चे अब तो जो तुमने पालना ली है उसका रिटर्न करो, अब तुम दूसरों को देने वाले बन जाओ। मनसा सेवा क्या है? जो कुछ हमने बाबा से लिया है, जो कुछ हमें मिला है, वो हम दूसरों को देना सीख जाएं। अपने शुभ वाइब्रेशन से, अपनी अच्छे विचारों से, शुद्ध संकल्पों से हर आत्मा को जो चाहिए वो दें, यही मनसा सेवा है। तो बाबा हम सबको पहले कहते हैं, पहले मन की शक्तियों को बढ़ाओ, मन को बहुत मजबूत करो। कुछ भी हो जाए, अधिक सोचने में, वर्णन करने में, चिंतन करने में समय नहीं लगाओ, उसमें समय शक्तियां एनर्जी बहुत व्यर्थ जाती है, उसको बचाओ। जब आपके पास स्टॉक होगा, बची हुई शक्तियां होंगी, तब तो दूसरों को दे सकोगे। और अगर आपके पास ही नहीं होगा तो दूसरों को क्या दोगे? इसलिए पहले हम सबको देखना है कि मेरे पास जो हम दूसरों को देना चाहते हैं, लोगों को जरूरत है, बेचारे छोटी छोटी बात में अपसेट हो रहे हैं, कितनी अशांति, कितना दुख, कितना अंदर से बेचैन है, पता ही नहीं चलता है कि भविष्य क्या है, क्या होने वाला है। महंगाई बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, कितना चारों तरफ से देख रहे हैं हम सभी क्या हो रहा दुनिया के अंदर। इनको तो देना है हमें, और दे तभी सकेंगे जब हमारे पास होगा। अगर हम ही छोटी छोटी बात में उलझे हुए हैं, हम ही इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, तो हम उनको क्या दे सकेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम दूसरी बातों पर ध्यान मत दो, जो हो रहा है ठीक है, ड्रामा की ये कल्याणकारी सीन है, परिवर्तन की सीन है। ये कलयुग जाएगा तो सतयुग आएगा। अगर कलयुग में पाप नहीं बढ़ेंगे, अगर अति नहीं होगी, तो इसका अंत भी नहीं होगा। तो ये सब अंत के लिए हो रहा है, लेकिन तुम बच्चों को उस सतयुग की आदि की रचना करनी है, स्थापना करनी है, उसके लिए खुद को भी तैयार करना है और जो तुम्हारे संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी तैयार करना है। और साथ साथ इतनी सब आत्माओं को शांति का दान देना है, शक्ति का दान देना है। सबसे अधिक जो हम सबसे नाराज है वो कौन? प्रकृति बहुत नाराज हो गई, क्योंकि हमने प्रकृति को बहुत छेड़ दिया है, बहुत उससे निकाला है। धरती के अंदर जितनी चीजें थी विज्ञान के साधनों से, हम सब ने उसको खाली कर दिया, अंदर से कोयला निकाल लिया, तेल निकाल लिया, सोना निकाल लिया, सब कुछ उसके अंदर से खानियां निकाल निकाल करके उसको फुला कर दिया। अब थोड़ा भी अगर हिल जाएगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा, धरती नीचे चली, जो बचा हुआ ऊपर का वो नीचे चला जाएगा। तो प्रकृति के साथ जो हमने इतना खेल किया, खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ की, बाबा कहता है बच्ची ये तो अपना बदला लेगी। तुमने अपनी नदियों को दूषित कर दिया, समुद्र को बेकार कर दिया, कचरा डाल डाल करके, शहरों की गंदगी डाल डाल करके। तो जब पानी दूषित हो गया, हवा दूषित हो गई, जल दूषित, सब कुछ दूषित हो गया, बेकार हो गया कलयुग में, तो ये पांचों तत्व जब बिगड़ गए तो इनको भी तो शक्ति देने वाला, शांति देने वाला कोई तो चाहिए। तो बाबा कहता है मैं तो प्रकृतिपति हूं, लेकिन तुम बच्चे भी मास्टर प्रकृतिपति हो। तो प्रकृतिपति बन करके इन तत्वों को भी शांति का, शक्ति का, प्यार का सहयोग दो, जिसे तुम्हें दर्द न पहुंचाए, दुख न पहुंचाए, मदद करो इनको। तो जब समय मिलता है, बाबा के बच्चे जब समय मिलता है, सवेरे शाम जब एकांत में बैठते हो, तो बाबा की शक्तियों का आवाहन करो अपने अंदर, और फिर शांति में बैठ करके बहुत अच्छे शांति के प्रकंपन, शांति के वाइब्रेशन फैलाओ वायुमंडल में। यही मनसा सेवा है, करते हो सभी, समय मिलता है इसके, लेकिन नहीं कि मैं अपने में ही बिजी रहता हूं, क्या करूं कैसे करूं, ये विकार, ये तूफान, ये संस्कार। तो बाबा कहता है अगर तुम अपने में ही उलझे रहोगे तो इनको कौन मदद करेगा। इसलिए इस जनवरी मास में विशेष मधुबन से एक डायरेक्शन भेजा गया है कि कम से कम ये अव्यक्त मास, साल का पहला मास, विशेष मास है, इस मास में अच्छी तरह से तपस्या करो, सब बातों से बुद्धि का किनारा छोड़ करके, किसी बात में जाओ नहीं, झमेलों में नहीं जाओ, झमेले बहुत हैं, एकांतवासी बन करके, एकाग्र चित्त हो करके, एक बाबा दूसरा न कोई, उसके साथ बुद्धि की तार जोड़ करके उसकी शक्तियों को लो। हम कोई को देते नहीं, दे नहीं सकते हैं, पहले हम लें, बाबा से पहले लो, और जब बाबा की शक्तियां आपके अंदर आएंगी तो आपके चेहरे से, आपके वाइब्रेशन से, वो चारों तरफ से ऑटोमेटिक फैलेंगे, देने के लिए जाने की जरूरत नहीं है कहीं। देखो एक बल्ब जल रहा है, पावरफुल बल्ब है, जितनी उसकी पावर है, कोई 100 वाट का है, कोई 1000 वाट का है, तो वो जब जलता है तो उसका चारों तरफ से प्रकाश, उसकी सकास, उसकी गर्मी फैलने लगती है, वो देने के ही नहीं जा रहा है। सूर्य भी किसी को देने नहीं जा रहा है, लेकिन सूर्य अपनी जगह पर जब निकल आता है और ज्यों ज्यों दिन बढ़ता जाता है तो उसकी गर्मी, उसकी सकास चारों तरफ से फैलने लगती है। बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं मेरे बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर के बैठ जाओ, हलचल के संकल्प बंद कर दो। संकल्प कभी भी शून्य नहीं होते, संकल्प का काम है चलना, सारा कल्प चलते हैं, लेकिन संकल्प एक जैसे, एक बाबा के प्यार के चले, शुद्ध चले, और बहुत धैर्यवत संकल्प, एनर्जी जमा हो जाएगी। जिसके संकल्प बहुत धैर्यवत हैं, जो जरूरी है वही हैं, वो संकल्प शक्तिशाली हो जाते, क्वालिटी वाले हो जाते, और मन की शक्तियां अपने आप प्रवाहित होने लगती, किसी कांच के ऊपर अगर सूर्य की किरण पड़ने लगे, कांच बहुत साफ हो, स्वच्छ हो, तो वो सूर्य की किरण भले ठंडी है, भले गर्म इतनी ना है, लेकिन कांच के थ्रू जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी शक्ति कई गुना हो जाती है। एकाग्र कांच के ऊपर, जैसे लेंस के ऊपर अगर किरणें आती हैं और लेंस स्थिर हो जाए किसी स्थान पर, तो वो किरण अग्नि पैदा कर देती है। ऐसे ही बाबा की किरणें अगर इस माइंड पर, मन की बुद्धि पर डायरेक्ट आने लगे, और ये मन बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, किसी भी प्रकार का इसके अंदर द्वंद नहीं है, दुविधा नहीं है, शांत है, शीतल है, तो बाबा की जो किरण आएगी वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी, चारों तरफ से फैलने लगेगी। और जिस आत्मा को जो जरूरत है, कोई को शांति चाहिए, कोई को प्यार चाहिए, कोई को सुख चाहिए, कोई को शांति चाहिए, जो चाहिए उसको उस वाइब्रेशन से मिलता रहेगा, कैच कर लेगा वो, कहीं से किरणें आ रही हैं, कोई मदद करने वाला है, इसको कहते हैं मनसा सेवा। और ऐसी मनसा सेवा करने का अभी समय आ गया है। अब इसके लिए जरूरत किस चीज की है? जरूरत है अपने संकल्पों को बहुत शुद्ध और शक्तिशाली बनाने की। जितना हम आत्माएं बिल्कुल व्यर्थ से, परचिंतन से, परदर्शन से, बातों से मुक्त रहती हैं, जो हो रहा है, बाबा कहता है बच्चे विस्तार को देखो मत, उस विस्तार में सार को देखो। इस विस्तार में सार क्या समाया हुआ है? सार स्वरूप स्थिति में स्थित होकर रहो तो आपके संकल्प बहुत क्वालिटी वाले बन जाएंगे, बहुत अच्छे होंगे, और वो संकल्प प्रवाहित होंगे, अपने आप लोगों तक पहुंचेंगे, मिलेगी शक्तियां। लेकिन इसके लिए संकल्पों को ब्रेक देने की जरूरत है, फुल स्टॉप। जो संकल्प मेरे काम के नहीं है, सुना, विचार आया, फुल स्टॉप, मुझे नहीं इस पर जाना है, इसका ख्याल मुझे नहीं करना, ये मेरे काम का नहीं है। बाबा कहता इतनी शक्ति हो जो सेकंड में फुल स्टॉप लगे, एक घंटा निकल गया, दो घंटा निकल गया, कभी कभी जब ऐसे व्यर्थ संकल्प आते हैं तो कितना समय निकल जाता है, आपने देखा होगा, कई बार तो रात रात निकल जाती, नींद ही नहीं आती लोगों को, सोचते ही रहते हैं, चिंतन चलता ही रहता, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस प्रकार के संकल्पों की क्यू लग जाती है। और ये संकल्पों की क्यू आत्मा की सब शक्तियों को खत्म करती जाती, नष्ट कर देती। जब ड्रामा कल्याणकारी है, जब बाबा कल्याणकारी है, हम उसके बच्चे बने हैं और हम श्रीमत के लकीर के अंदर चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव संकल्प करो कि कोई भी सीन अगर आई है उसमें कोई न कोई प्रकार के कल्याण समाया हुआ है, इसमें कुछ भला है, कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए कभी भी उस बात में बहुत प्रश्न उठा करके मन को डिस्टर्ब मत करो। जितना शांत है, शीतल है, स्वच्छ है, उतना बाबा की किरणों को कैच कर सकता है। जो कल बाबा की मुरली सुनी, बच्चे बाबा तुमको झूलों में झुलाने के लिए आया है। सतयुग के अंदर तो सिर्फ एक ही झूला होगा, देवताओं को गोल्डन झूले में झूलेंगे, लेकिन संगम युग पर तुम बच्चों को अनेक प्रकार के झूले मिले हैं। कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के सुख में झूलो, आनंद के झूले में झूलो, प्रेम के झूले में झूलो, कभी ज्ञान के झूले में झूलो, कभी बाबा की गोदी में चले जाओ। संगम पर कितने हम सब भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं जो बाबा हम बच्चों को इतना प्यार कर रहा है कि मेरे बच्चों का पैर मिट्टी पर नहीं जाना चाहिए। अब इस बात पर शायद विचार आप लोगों का चला हो, कितना प्यार से बाबा ने मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बहुत रमणीकता से कहा कि बच्चे, वो लोग भी, कोई बच्चे मिट्टी खाने वाले होते हैं, मिट्टी से प्यार करते हैं, आप बच्चे मिट्टी से नहीं खेलो, ये देहवान मिट्टी है, ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो जितने भी व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, बुरे संकल्प आ रहे हैं, उन सब का कारण हम सब बहुत समय से इस मिट्टी से खेलते आए हैं। 84 जन्म इस मिट्टी के साथ रहे, 21 जन्म इस मिट्टी के भान से न्यारे रहे और 63 जन्म इस मिट्टी के अधीन होकर के रहे, अपने आप को भूल गए। अब ये देह भान इतनी जल्दी से आत्मा छूट जाएगा, आत्मा से बहुत मुश्किल, मेहनत लगती है इसमें, कुछ समय अभ्यास करो, ये अलग है मैं अलग हूं। जिसने ये अभ्यास किया ना, कुछ समय के लिए लेट जाओ ऐसे, जैसे शरीर को ऐसे छोड़ दिया, यहां बैठे हैं, शरीर अलग है, मैं आत्मा चमक रही हूं भ्रकुटी में, आप अभ्यास करके देखो, मैं एक लाइट हूं, मैं एक माइट हूं, मैं एक शक्ति हूं, बहुत सूक्ष्म शक्ति हूं और इस भ्रकुटी के बीच में हूं। थोड़ा समय भी अभ्यास करोगे ना तो ये शरीर ऐसे हो जाए, बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल लाइट है, मैं इससे अलग हूं। ये मिट्टी की आकर्षण, आंख की, मुख की, कानों की, हाथों की, पैरों की, ये सब बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे। और जब ये डिटैच होने का अभ्यास होगा ना तो आत्मा की शक्तियां बढ़ने लगेंगी, लगेगा कि जो सोचता हूं वही हो रहा है, वही संकल्प चल रहे हैं जो होने वाला है, दूसरे संकल्प नहीं चलेंगे। अब अभ्यास करते जाएंगे तो आपको इतना अच्छा आनंद आएगा, मौज आएगी, कितनी आत्मा शक्तिशाली है, जो देखना चाहूं देखूं, जो सोचना चाहूं सोचूं, जो बोलना चाहूं बोलूं, जो सुनना चाहूं सुनूं, नहीं तो नहीं। ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास आत्मा को बहुत बहुत शक्तियां देता है। हम लोग ये अभ्यास करते हैं तो इतना मजा आता है, जैसे सब इंद्रियां एकदम अलग हैं और मैं आत्मा अलग हूं, मालिक हूं। आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही बाबा की किरणों का अनुभव होने लगता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम परम धाम नहीं जाते, परम धाम की किरणें अपने आप अनुभव होने लगते कि मेरे ऊपर आ रही हैं। और वो शिव बाबा की किरणें जो मेरे ऊपर आ रही हैं, वो ऐसे लगता है चारों तरफ से फैल रही हैं, ये मनसा सेवा हो रही है। चार प्रकार से हम लोग मनसा सेवा करते हैं। पहला है बहुत शुद्ध संकल्प, बहुत पवित्र संकल्प है, किसी आत्मा से मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। कई बार ये संकल्प रख करके मनसा सेवा कोई कोई करते हैं कि अगर इस आत्मा का कल्याण होगा तो ये मदद करेगी, ये हमारा सहयोगी बनेगी, ये हमारे यज्ञ को, हमारे सेंटर को कोई सहयोग दे देगी, हमारे मार्ग का विघ्न खत्म हो जाएगा। वास्तव में ये यथार्थ नहीं है, ये भी एक लिमिटेशन, हद है। और हद की बुद्धि वाले यही योग करते हैं कि मैं मनसा सेवा करूं और ये चेंज हो जाए, हद के संकल्प। बाबा कहता है बच्चे तुम बेहद बाबा के बच्चे हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, जो बाबा के वर्षे के अधिकारी बनने वाले होंगे वो सब कुछ अपने आप सफल करेंगे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहना रख करके योग कर रहे हैं, माना स्वार्थ है, और स्वार्थ वाली मनसा कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसलिए पहले चार चक्करों से अपने को मुक्त करो। मनसा सेवा करने के लिए पहला चक्कर है मानसान का चक्कर। मेरी कम से कम महिमा होगी, इस भाई ने मुझे मनसा से शक्ति दी, इसने बड़ा अच्छा योग मेरे लिए किया। अगर मेरे अंदर कोई मान शान की नाम की कोई भी इच्छा है और फिर मैं योग कर रहा हूं, तो बाबा कहता तुम तो अपने ही मान शान के चक्र के अंदर घूम रहे हो, तुम्हारी मनसा सक्सेस नहीं होगी, ये योग का प्रयोग नहीं होगा, ये यथार्थ विधि नहीं है। दूसरा चक्कर आप देखेंगे, कोई थोड़ा सा करता है अभिमान आ जाता है, मैंपन, मैं बड़ा अच्छा योगी हूं, मैं बड़ा अच्छा ज्ञानी हूं, मेरे बड़े अच्छे संकल्प हैं, मेरी बहुत अच्छी सबके प्रति भावनाएं हैं, है शुद्ध संकल्प, लेकिन उस शुद्ध संकल्प के अंदर भी अहम है, मैंपन है, और उस अभिमान के कारण वो संकल्प जो कर रहा है वो भी स्वार्थ वाले हो जाते हैं, उसमें भी कोई चाहनाएं और कामनाएं होती हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये एक बहुत बड़ा चक्र है अभिमान और अपमान का, क्योंकि अभिमान वाले की निशानी आप देखेंगे ना, जिसको जरा भी अभिमान होगा, मैंपन होगा, उसको बहुत जल्दी अपमान की फीलिंग आएगी, बहुत जल्दी, कोई थोड़ी सी बात कह देगा ना उसको फट से लग जाएगा, दुख हो जाएगा। अब जो इस दुख के चक्कर में घूम रहा है, जिसको अपमान की फीलिंग आ रही है, मनसा सेवा क्या करेगा, वो तो अपने मन के उलझन में उलझा हुआ रहेगा। और तीसरा चक्र है बहुत जल्दी, कोई का अगर महिमा हो रही है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई की अच्छी स्थिति है, तो ईर्ष्या की, ईर्ष्या द्वेष नफरत, जिसको बाबा कहते हैं रीस और रेस, भेंट कर रहे हैं, ये भी एक चक्कर चल रहा है जिसके अंदर आत्माएं उलझी हुई हैं। अब मन इसके अंदर उलझा हुआ है कि ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, मेरा क्या होगा, तो मन उसी में उलझा रहेगा, मनसा सेवा क्या करेगा। और चौथा चक्र देखेंगे आप, कोई न कोई आत्मा किसी न किसी के प्रभाव में आ जाती है, फंस जाती है, ये बड़ा अच्छा योगी है, बड़ा अच्छा ज्ञानी है, बहुत समझदार है, बहुत सेवाधारी है, या अपने में फंसा लेती है कि मैं बड़ा अच्छा हूं, फंसती है या फंसा लेती है। अगर किसी भी चक्र के अंदर हम फंसे हुए हैं, मनसा सेवा नहीं हो सकती। मनसा सेवा करने वाली आत्मा सब चक्रों से मुक्त हो जाती है। जब सब चक्करों से मुक्त होकर के मुझे न मान चाहिए, न शान चाहिए, न मुझे कभी कोई बात का अभिमान आ जाए, कोई अपमान करे तो भले करे, मुझे क्या चाहिए, ऐसी स्थिति जब बने मन की, तो ये मन शक्तिशाली हो जाएगा। फिर आप जो संकल्प करेंगे, जिस आत्मा के प्रति करेंगे, उसका भला होने लगेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। तो बाबा कहता है पहले बच्चे अपने पूर्व स्वरूप में स्थित होकर के बैठो, बीज के साथ तना है, वृक्ष को इमर्ज करो, कौन सा वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष में बीज के साथ फाउंडेशन के अंदर तने में हम सब बैठे हुए तपस्वी हैं, और जो सारा वृक्ष निकला है, वैरायटी वृक्ष है, तने से पहले दो पत्ते निकले, फिर चार निकले, फिर झाड़ निकला, टाल टालियां निकली, इब्राहिम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, शंकराचार्य आया, अनेक धर्म आए, और आज ये वृक्ष कितना बड़ा हो गया, अनेक टाल टालियां, अनेक उससे भी अनेक पौधे निकल गए, वृक्ष के वृक्ष हो गए। तो बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे साथ तपस्वी मूर्त बन करके इस वृक्ष के तने में बैठो और अनुभव करो, सारे वृक्ष को मेरे से लाइट मिल रही है, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं इष्ट देव हूं, बाबा के साथ तपस्या में बैठा हूं। आपको इतना अच्छा अनुभव होगा, ऐसे बैठ जाओ तपस्वी मूर्त होकर के, ऐसे लगेगा ये सब शक्तियां पूरे वृक्ष को मिल रही हैं। जहां पर जिस आत्मा को जो आवश्यकता है सबको यही जल दे रहा है। संकल्प हमारा पूरा वृक्ष आपको इमर्ज दिखाई देने लगेगा। तो पहला एक शुभ संकल्पों से सेवा की, दूसरा पूर्वज बन करके पूरे वृक्ष को शक्ति दी, और तीसरा बाबा कहता है बच्चे डबल लाइट बनकर फरिश्ता स्वरूप में अपने सूक्ष्म तन में बाबा के पास आ जाओ। जाते हो बाबा के पास, पंख हैं, बाबा के पास जाने के लिए तो पंख चाहिए, बाबा तो ऊपर है ना, तो पंख कौन से चाहिए? उमंग, उत्साह, हिम्मत, खुशी, नशा, ये पेट्रोल भी है तो पंख भी है आत्मा के लिए। बहुत अच्छे खुशी के संकल्प करो, नशे के संकल्प करो, वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे चुना है, कहाँ कहाँ से निकाला है। जब इतने नशे में बैठेंगे ना खुशी में तो डबल लाइट हो जाएंगे, सब बोझ हल्के हो जाएंगे। और बाबा के पास वतन में बैठ गए, सूक्ष्म वतन का लाइट का अनुभव करते करते आपको लगेगा कि ब्रह्मा बाबा के साथ सारे विश्व को मैं सकाश दे रहा हूँ, फरिश्ता बन करके सबकी रक्षा कर रहा हूँ। जो आत्मा जो कहीं भी पुकार रही है, याद कर रही है, मेरे फरिश्ते स्वरूप द्वारा उसको अनुभव हो रहे हैं। ये तीसरी स्टेज है मनसा सेवा की। और चौथी स्टेज में परम धाम की एक ऊंची स्टेज है, जहां बीज रूप बाबा है और वृक्ष नीचे है, बीज ऊपर है वृक्ष नीचे है। तो बीज रूप बन करके बाबा के साथ परम धाम में पहुंच जाएं जैसे, और ऊपर से चारों तरफ वृक्ष को लाइट मिल रही है, शक्तियां मिल रही हैं। एक बार बाबा आए थे मधुबन में, तो बहुत बड़ा एक जगह भूकंप आया था, तो बाबा ने कहा बच्चे चलो अभी भूकंप जहां आया ना वहां सकाश दो, बहुत बच्चे दुखी हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत पुकार रहे हैं, मदद करो, चलो बाबा के पास। ऐसे बाबा बैठे थे सामने और सब बच्चों को ड्रिल कराई, दृष्टि दी और ऐसे ले गया ऊपर, ऊपर से परमधाम की ऊंची स्टेज से उनको शक्ति दो। परमधाम की ऊंची स्टेज माना कोई नीचे का संकल्प नहीं। अगर मदद करने वाली आत्मा, मान लो एक छोटा सा मिसाल, कोई पेशेंट को आपको मदद करनी, पेशेंट तो चिल्लाएगा, उसको तो दर्द हो रहा है, उसको तो दुख हो रहा है, लेकिन उसकी जो दवाई देने वाला है डॉक्टर है वो भी उस दुख को देख करके दुखी हो जाए, वो भी कहे अरे हाय इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द, वो खुद आंसू बहाने लगे उसको देख के, तो क्या करेगा? उसको इंजेक्शन लगा सकेगा? उसके दर्द को दूर कर सकेगा? अगर हम भी उसके दुख में दुखी हो गए, साधारण संकल्प करने लगे पता नहीं मेरा भी ऐसा न हो जाए, मेरे साथ भी ऐसा न हो जाए, तो हम सेवा नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहता है इस साकारी दुनिया के संकल्प समाप्त करो और तुम मेरे साथ ऊपर बैठो जहां दुख दर्द है ही नहीं, जहां कोई संकल्प है ही नहीं, और बहुत ऊंची स्थिति में बीज रूप स्थिति में बैठ करके बीज बन करके इस वृक्ष को शक्ति दो, इस मनुष्य आत्माओं को सकाश दो, उनके दर्द दूर हो जाए। तो इस प्रकार से हम सबको बीच बीच में ड्रिल करनी है, अभ्यास करना है, मनसा शक्तियों को बढ़ाना है। तो इस बार जो होमवर्क भेजा है जनवरी मास में एक एक हफ्ते के लिए, ये चारों टॉपिक पर, ये चारों टॉपिक पर अभ्यास करो और सात सात दिन तक अभ्यास करो, जिससे आपको एक अभ्यास आदत बन जाए। जो आदत होती है ना वो नेचुरल की जाती, फिर करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब समय मिलेगा आप उस स्थिति में बैठ जाएंगे, सकाश जाने लगेगी, मनसा सेवा शुरू हो जाएगी। इस समय हम तीन प्रकार की सेवा कर रहे हैं, एक मन से कर रहे हैं, एक वाणी से कर रहे हैं, और दूसरी तीसरी गुणों से कर रहे हैं। बाबा तीनों प्रकार की सेवा के लिए अलग अलग शक्ति दी है हमको। कर्म से हम गुणों का दान करते हैं। कई बार बाबा कहते हैं जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। किसी को सिखाना होता है तो उसकी अच्छी से अच्छी विधि क्या है, खुद कर लो। खुद कर लोगे, खुद करने लगोगे तो दूसरा देख करके आपसे सीख जाएगा। कर्मणा द्वारा गुणों का दान। हम दूसरों को ऑर्डर करते रहे और खुद न करते हो कभी भी वो सीखेगा नहीं। हम करने लगेंगे वो अपने आप सीख लेगा। एक बहुत अच्छी विधि है गुणों का दान करने की। हम किस तरह से कर रहे हैं, शांति से, प्यार से, अपना समझ करके कोई भी काम कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, तो सामने वाला देख रहा है, देखो भाई साहब कितने अच्छे हैं, कैसे कर रहे हैं काम, ये तो इसका कौन सा दान मिला, गुण दान हो रहा है, अपने आप हो रहा है, देना नहीं है, वो देखने वाला सीख रहा है। जब कोई सामने आ जाता है बाबा की कोई ना कोई एक अच्छी सी बात उसको सुना दी, ज्ञान दान वाणी देख से कर रहे हैं। कोई भी आत्मा मेरे सामने आए सिर्फ हालचाल नहीं पूछे लेकिन उसको बाबा की कोई एक अच्छी सी बात, कोई उसी दिन की मुरली की बात, आज जो भी मेरे सामने आए तो हमने बाबा की बात क्या सुनाई। बाबा आज कह रहे थे वरदान के अंदर, बच्चे दुनिया के अंदर अखंडानंद हैं। सन्यासी लोग अपने को अखंडानंद कहलाते हैं, अपना अपना नाम रखा लेते हैं। अरे अखंड आनंद क्या है कि उनको अनुभव ही नहीं, अखंड प्यार क्या है, अखंड सुख क्या है, हम सबको बाबा ने अनुभव कराया है। लेकिन इस अखंड सुख का, अखंड आनंद का अनुभव करने के लिए विधि बाबा ने बता दी। बच्चे किसी के दोष नहीं देखो, किसी के अवगुण नहीं देखो, गुणग्राही होकर के रहो, पर चिंतन नहीं करो, आपकी स्थिति अखंड बन जाएगी। अब ऐसी बातें जो बाबा की मुरली से हम सुन लेते हैं, एक बार पढ़ ली, सुन ली, वरदान से सुन ली, स्लोगन से सुन ली, कोई क्वेश्चन आंसर से सुन ली, बाबा कहता है इसका बार बार खुद पहले चिंतन करो। और जब कोई सामने आ जाए, कोई भी बात, बाबा का बच्चा आए, ज्ञानी आए, अज्ञानी आए, कोई भी आत्मा आए, उसको बाबा की कोई एक बात सुना करके उसको खुश कर दो, ये ज्ञान दान हो जाएगा। वाणी द्वारा हम गुणों का दान, ज्ञान दान कर रहे हैं, कर्म के द्वारा गुणों का दान कर रहे हैं। और जब अच्छी मनसा है, जिसके मनसा बहुत शुद्ध चलती है, कुछ समय पहले बाबा ने एक मुरली जलाई थी, बच्चे अंदर की चिंतन का दर्पण चेहरा है, मेरे अंदर क्या है ये चेहरा मेरा बताता है। अगर अंदर मेरे संकल्पों में बहुत उथल पुथल है, इधर के उधर के संकल्प चल रहे हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, साधारण संकल्प हैं, नेगेटिव संकल्प हैं, तो चेहरा खुश्क नहीं, बिल्कुल ऐसे सुस्त हो जाएगा, खुशी का चेहरा नहीं होगा, चेहरे से वो प्रसन्नता झलकेगी नहीं, वो रुहाब दिखाई नहीं देगा। तो अंदर मेरे क्या चल रहा है, अगर अंदर मेरा बहुत शुद्ध है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत रहम वाला है, बहुत शुभ भावना से संपन्न है, तो क्या होगा, ये चेहरा बताएगा इसके बड़े अच्छे वाइब्रेशन है, इसके पास जाने से बड़ा सुख मिलता है, इसकी दृष्टि बड़ी अच्छी है। इसका अनुभव मैं बताता हूं आपको। हम दादियों के साथ रहते हैं बहुत समय, 42 साल हो गए, और सभी दादियों से बहुत समीप का संबंध रहा है, क्योंकि शुरू से लेकर के दादियों के साथ पत्र व्यवहार, लिखने का, जवाब देने का, मुरली का कनेक्शन रहा। हमने दादियों को कभी भी उनके साथ बैठ करके कोई इतनी कोई डर लगे, कोई बहुत ऐसा लगे हम इनके साथ जाएंगे पता नहीं क्या बोल देंगे, जैसे आजकल आप देखेंगे कईयों के पास सामने जाने में डर लगता है, पता नहीं क्या बोल देगा, पता नहीं क्या कह देगा, इधर बैठा होगा तो इधर पीछे से निकल के चले जाएंगे, कईयों के साथ ऐसा होता है। और कई बैठे होंगे तो सब उसके पीछे आगे आ जाएंगे, बुलाएगा नहीं, वो बैठा है सिर्फ, चलो दृष्टि ले लूं, मिल लूं, हेलो कर लूं, उसके सामने आने की इच्छा होती है। और किसी से डर लगता है, किसके सामने जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, कारण क्या है, बोल नहीं रहा कुछ वो, लेकिन उसकी जो मनसा की बहुत पॉजिटिव संकल्प है, बहुत अच्छे विचार है, वो विचार एक आभा मंडल बनते हैं, एक ओरा बनता है। और उस ओरा के कारण जिसका बहुत पवित्र ओरा है, बहुत शुद्ध संकल्प अंदर चलते हैं, वो खींचता है लोगों को, आकर्षित करता है। हमारी परदादी थी निर्मल शांता दादी, जहां बैठती थी सब घेर लेते थे दादी को, कुछ मिलना, कुछ बात करना चाहते थे, दृष्टि लेना चाहते थे, खींचती थी, क्योंकि उसके संकल्पों में जरा भी नेगेटिविटी नहीं, जरा भी कोई प्रकार का इधर उधर का संकल्प नहीं, बहुत बहुत शुद्ध संकल्प, बहुत पवित्र संकल्प। इन दादियों ने अपने संकल्पों की क्वालिटी को कितना अच्छा बनाया है, जो सब उनसे मिलना चाहते हैं, सब उनके समीप आना चाहते हैं। इनका ओरा मनसा सेवा कर रहा है, मनसा सेवा करने कहीं नहीं जा रहे हैं, हम समझते हैं ना, हम यहां बैठ जाएं, लंदन को सकास दें, अमेरिका को सकास दें, बाबा कहता है तुम कहां सकास दोगे, तुम्हारे पास कहां शक्ति है, तुम अपनी पावरफुल स्थिति में बैठो, जहां जरूरत होगी बाबा आपकी सकास पहुंचा देगा, विधि ये है। लेकिन कई बार हम लोग ऐसा ज्ञान सुना लेते हैं, समझ लेते हैं कि शायद मुझे वहां जाकर के सकास देनी है, मुझे यहां ही रहना है, लेकिन अपनी बहुत शक्तिशाली स्थिति में, कभी परम धाम की स्थिति में, कभी सूक्ष्मतन की स्थिति में, कभी पूर्वजपन की स्थिति में, कभी एक इष्ट देव की स्थिति में, कोई स्थिति में बैठ जाओ, उस सोमान को याद करो, जितना ऊंचे सोमान में स्थित होकर के बैठोगे उतना उसका ओरा बड़ा सुंदर बन जाएगा, वो लाइट का एक सुंदर आभा मंडल बनेगा, और वो प्रकाश चारों तरफ से अनुभव कराएगा, लाइट का, सुख का, शांति का, प्यार का, ये है मनसा सेवा। कभी चार प्रकार से अपने ऊपर प्रयोग करो, पहले अपने पर प्रयोग करो, मेरा कोई ऐसा संस्कार है जो मुझे बार बार परेशान करता है, मान लो हमारे अंदर एक काम विकार का संस्कार है, बहुत जन्मों का है, बॉडी कॉन्शियस में रहे हैं, क्रोध का संस्कार है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, चाहता नहीं हूं मुझे गुस्सा है, लेकिन कोई कुछ कह देता है, मेरे संकल्प के अनुसार कोई काम नहीं होता है, मेरा कोई कहना नहीं मानता है, मैं बड़ा हूं, मेरे से सब छोटे हैं, मेरा मानना चाहिए इनको, नहीं मानता है तो मुझे गुस्सा आता है, बहुत क्रोध का संस्कार। बाबा तो कहता प्यार का स्वरूप बनो, प्यार के सागर के बच्चे हो, शांति के सागर के बच्चे, गुस्सा नहीं करो, लेकिन मेरा वो संस्कार बार बार इमर्ज होता है, मुझे कोई चीज देख करके बार बार आता है ये मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, या कोई सी इतनी अटैचमेंट है वही अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा है, इसका रूप बड़ा अच्छा है, इसकी वाणी बड़ी अच्छी है, इसका चलना बड़ा अच्छा है, आकर्षण होता है किसी देहधारी का, या छोटी छोटी बात में मेरे को लगता है मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है, अहंकार आता है, कोई भी विकारों का बाल बच्चा मेरे पास है और उसको मैं जीतना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, मुरली से नहीं होगा, सिर्फ मुरली सुनने से नहीं होगा, सिर्फ योग लगाने से नहीं होगा, ब्रह्मा भोजन खाने से नहीं होगा, इसके लिए आपको लेजर किरण देनी पड़ेगी, जैसे कोई कड़ी बीमारी होती है ना अंदर, तो उसको सकास देते हैं, लाइट देते हैं, किरणें देते हैं, ताकि वो बीमारी खत्म हो जाए। कुछ समय एकांत में बैठ करके बाबा की किरणों को एकाग्र करो अपने ऊपर, और एकाग्र करके जो विकार है उस पर ऐसी नजर डालो कि वो समाप्त हो जाए। दृढ़ता का संकल्प ही तपस्या है, संकल्प करो बाबा ये संस्कार मुझे परिवर्तन करना है, अब इसके लिए मैं आपके साथ मिल रहा हूँ, आपकी शक्ति आए जिससे चेंज हो जाए। तो पहला प्रयोग करो अपने कड़े संस्कारों पर, आप देखेंगे धीरे धीरे वो संस्कार गल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, उत्पत्ति नहीं होगी उस संस्कार की, जन्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर प्रयोग नहीं करेंगे ना तो संस्कार जाएगा नहीं, सुनते रहेंगे वो दब जाएगी, बात दबी हुई रहेगी, लेकिन जब समय आएगा ना तो निकल आएगा। परिस्थिति ऐसी बन गई, संग ऐसा हो गया, वो संस्कार जो दबा हुआ है वो निकल आएगा, और अगर आपने उसको जलाया हुआ है तो कोई भी परिस्थिति आ जाए वो संस्कार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मनसा सेवा पहले अपने संस्कारों पर करनी है, फिर हमारे संबंध में कोई रुकावट मार्ग में अंदर डाल रहा है, कोई ज्ञान में नहीं चलने दे रहा है, कोई पवित्र नहीं रहने दे रहा है, कोई किसी प्रकार का नेगेटिव वातावरण बना रहा है, कोई मेरे लिए उल्टा बोल रहा है, कुछ समय उस आत्मा को बाबा के आगे इमर्ज करके कि बाबा इसको शक्ति मिले, ये सकास मिले, ये आपका बच्चा बने, ये सहयोगी आपका बने, मेरी बहुत शुभ भावनाएं हैं इसके लिए, मुझे इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपसे अधिकार ले ले। तो ऐसे उस आत्मा को इमर्ज करके कुछ न कुछ संकल्प 15 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन उस आत्मा को बाबा के हवाले कर दो। जैसे पेशेंट को डॉक्टर के हवाले कर देते हैं कि डॉक्टर तुम अभी चाह चाहे जैसे ऑपरेशन कर, ठीक कर दे इसको, फिर हम कोई इंटरफेयर नहीं करते, डॉक्टर को कुछ नहीं कहते। दूसरा प्रयोग बता रहे थे संबंधों पर, जहां से कोई रुकावट हो उसको समाप्त करने के लिए शिव बाबा के हवाले उसको करके और खुद सकास दो। और फिर तीसरा प्रयोग करो पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले, बहुत दुखी हैं, बहुत अशांत हैं, बाबा इनका कल्याण करो, इनका भला हो, बहुत शुभ भावना रख करके कुछ समय उनको सकास दो। फिर चौथा, जो आत्माएं जन्म जिनको नहीं मिल रहा वो बहुत दुखी हैं, शरीर नहीं मिला, अकाले मृत्यु हो गई, भटक रही हैं, इविल स्पिरिट्स हैं या श्रेष्ठ आत्माएं भी हैं, ऐसा नहीं सब इविल ही हैं, लेकिन अचानक मौत के कारण उनको शरीर नहीं मिला, और जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है ना उसको बहुत दुख होता है, लाइट के शरीर में है लेकिन वो भटकती है इधर उधर, ऐसी आत्माओं को भी अब मुक्ति देने का समय है। कई सेंटर्स पर ऐसी आत्माएं गुप्त रीति से आती हैं, अगर बहुत अच्छा वातावरण होता ना तो उनको उसमें बहुत सुख मिलता है, उनको वहां से मुक्ति मिल जाती है। अगर अच्छी वाइब्रेशन का वातावरण बना हुआ सेंटर पर तो कई ऐसी आत्माएं आकर के मुक्त हो जाती हैं, उनको जन्म मिल जाते हैं। अब समय है कि ऐसी आत्माओं को भी हम मदद करें, मुक्ति चल मुक्ति धाम में चलने का समय है, सब मुक्त हों, लेकिन हमारे पास समय होना चाहिए इसके लिए। इधर उधर के चिंतन में ही समय है तो ये चिंतन कब चलेगा। और पांचवा, फिर इन सभी तत्वों को इमर्ज करो, पांचों तत्वों को एक बार बाबा ने पांच देवताओं के रूप में इमर्ज किया था, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, आकाश देवता, पृथ्वी देवी, ये सब देवताओं के रूप में सामने इमर्ज किए थे। याद होगा शायद किसी किसी को, जब दादी जी ने शरीर छोड़ा था तब बाबा ने एक संदेश दिया था कि जब दादी यहां से वतन में गई तो पांचों तत्व देवताओं के रूप में दादी जी का वेलकम कर रहे थे, क्योंकि दादी ने इन पांचों तत्वों की बहुत अच्छी सेवा की है, इनको शक्ति दी है, सकास दी है। हम सभी भी इन देवताओं के रूप में, क्योंकि देवता माना देने वाले हैं, ये हर तत्व देने वाला है, लेने वाला नहीं है किसी से। हमने उनसे बहुत कुछ ले लिया इसलिए हमको दुख दे रहा है। इन देवताओं को हम मदद करें, समय शांति दें, सुख दें। प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है लेकिन हम प्रकृति पति बन करके अब इन सबको मदद करें ताकि ये फिर से अपनी उसी सतो प्रधान स्टेज में, दातापन की स्टेज में आ जाएं। अब इस प्रकार से पांचों तत्वों को, भटकती हुई आत्माओं को, विश्व की ग्लोब को, अपने संबंध संपर्क को, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना अथवा मदद करना हमारा काम है। हम सब बाबा के बच्चे इस समय बाबा के साथ सेवा पर हैं। बाबा ने अपने साथी बनाया ना हमको, हम सब बाबा के राइट हैंड्स हैं। और बाबा यही सब चेंज करने के लिए आया है, पूरे ग्लोब को चेंज कर रहा है। अपने बच्चों को कहता है, बच्चे मेरे समान बन करके, बीज बन करके इस वृक्ष को परिवर्तन करने में मदद करो। यह है मनसा सेवा। अब इसके लिए हम सबको बहुत बातों से मुक्त होना पड़ेगा। अगर हम बहुत सेवाओं में बिजी हैं, तेरे मेरे में बिजी हैं, अपनी अपनी एरिया में बिजी हैं, अपने मान सान के चक्कर में बिजी हैं, कहीं पर भी बजी हैं, तो हम इनको क्या देंगे मदद, क्या करेंगे हम। अब बाबा कहता, बच्चे सबसे निकलो, बचो, अपने को बचाओ और सबसे मुक्त हो करके तुम अपनी ऊंची स्थिति पर स्थित हो जाओ। कोई को देखो मत, कौन क्या कर रहा है तुमको देखना नहीं है, अपनी उस ऊंची स्थिति में बैठ जाओ, मैं और मेरा बाबा बस। जैसा बाबा है वैसा मैं हूं। मास्टर बन करके, मास्टर बीज बन करके, मास्टर लाइट माइट संपन्न बन करके, बहुत पवित्र स्वरूप में स्थित होकर के बाबा की लाइट को लो और विश्व को दो। यही सेवा अंतिम सेवा है, यही सेवा मनसा सेवा है। अब ऐसी सकास देने का कार्य हरेक को करना है। तो कम से कम इस जनवरी मास में हम सभी, डायरेक्शन में लिखा है एक घंटा सवेरे और एक घंटा शाम को, ये अभ्यास करो। आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन इतने सब ब्राह्मण अगर संगठित रूप में करेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। अकेले अकेले करेंगे तो इतनी पावर नहीं निकले। एक लकड़ी जलाओ तो कितनी आग होगी, अगर पूरी लकड़ियों का समूह और जल रहा हो तो उसकी आग कितनी तेज होगी। तो बाबा कहता है, मेरे बच्चों का संगठन चाहिए। अगर एक सेंटर पर 100 स्टूडेंट हैं, उसमें से 20 स्टूडेंट भी ऐसे तपस्या करें तो उनका बहुत अच्छा वातावरण बनेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। 100 नहीं करेंगे, सब नहीं कर सकते हैं, सहज नहीं है ऐसा, लेकिन जो सब बातों से व्यर्थ से मुक्त हैं वही ये सेवा कर सकते हैं। तो हम सब लक्ष्य रखें कि इस नए साल में हम सब ये संकल्प बाबा के घर में करें कि हम सब व्यर्थ से मुक्त हो जाए। कल बाबा ने कहा ना, बच्चे व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, ये मुझे दान दे दो, ये मुझे गिफ्ट दे दो। तो हम सब बाबा को ये गिफ्ट दे करके बाबा की आशाओं को अवश्य पूरा करेंगे। ओके, ठीक है। ओम शांति। अभी आपको कोई प्रश्न पूछना है किसी को, आप ललिता बहन नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ अभी, अगर कोई को प्रश्न पूछना हो तो। एक मिनट, वो आ जाए, हिंदी में पूछेंगे, आ जाने दो, उनको ट्रांसलेशन करेंगे। और किसको पूछना है? दो, तीन और चार, अच्छा है, ठीक है। रख दो माइक, दे दो उनको। एक मिनट वो आ जाए। आपको देता है ये प्रश्न आप पूछो, शुरू करो।
आपने अभी बताया था ना कि भटकती हुई आत्माओं को भी सकास देने से वो भी शांत हो जाती है, और आप अभी बताया कि वो अभी आती है सेंटर पे, तो ये थोड़ा कोई एग्जांपल देंगे इसका, कोई एग्जांपल।
Sister has this question that Rajubhai was just mentioning about souls who have had untimely death and they don't have a body, they haven't been born, and they even come to the center sometimes, and how we can help them in the centers. So she wants to him to elaborate on that or give some example.
Kahi centers se samachar aise aate hain.
We get news from certain centers.
कि अचानक किसी के अंदर कोई प्रवेश हो गई।
That suddenly some soul has entered someone.
कभी कभी वो आत्मा तो शांत बैठी रहती है।
Sometimes that soul who has entered sits very peacefully.
इन कभी कभी वो बहुत हलचल करने।
Sometimes it starts creating a lot of upheaval.
कंट्रोल से बाहर हो जाती
है। And it's out of control.
लोग डरने लगते हैं।
And people start getting afraid.
तो डरने की जरूरत नहीं पड़ती।
So there's no need to be afraid actually.
हम योगी आत्माएं उस आत्मा को कुछ समय शांति।
We are yogi souls, so we have to give peace to that soul.
तो उस स्थान से वो चली जाएगी।
Then when we start doing that, that soul goes away.
और कई आत्माएं अगर शांति लेने के लिए आती भी हैं, बिना किसी के आधार के नहीं ले सकती हैं। कोई
so,
शरीर चाहिए उनको।
If some soul is coming to receive peace, they do need some kind of basis. They do need a body. They won't go away just like that.
तो कभी न कभी अगर उसी क्वालिटी की कोई बैठे होते हैं, तो उनमें प्रवेश कर जाते हैं।
So because they need a body, so the kind of body they want, the basis they want, if there is some person like that sitting there in that center, they enter that person.
इसलिए बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छी स्थिति में बैठो ताकि उनका प्रभाव आपके ऊपर न पड़े।
So Baba says that you should sit in a very high good state so that they do not influence you.
और वो आकर के अनुभव करके शांति का बिना प्रवेश किए हुए मुक्ति को पाले,
so
वहाँ से छूट जाए।
So become Baba says become sit in your elevated stage in such a way that they just come close to you, they experience what they want to experience, and without entering you they leave.
लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं है।
But there's no need to be afraid of them.
हम डर जाते हैं तो उनको और हिम्मत आ जाती है।
So when we get afraid, then they become more courageous. They become more daring.
हमारे अंदर ये आना चाहिए कि इनको भी यहाँ से मुक्ति मिले।
What thought should come in our mind is that may these souls also get liberation from here.
क्योंकि ये परवश हैं।
Because they are in being controlled by different things. They're helpless.
समझ गए? और क्या पूछ रहे हैं दूसरे?
This is a little different from the class. It is regarding how we give drishti and take drishti so that what thought should be there, what should be a correct elevated position so that it has an impact on the others.
Did you get that? No, okay. She's saying that this is a different question, it's not related maybe to the class, it's about drishti, about giving drishti and taking drishti. So how should we give drishti? What kind of thoughts should we have, or when we are getting drishti, what is the actual process, the right way, she's asking.
बाबा ने जो दृष्टि का महत्व सुनाया है वो है अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर आत्मा को देखना.
So Baba has told us the importance of drishti, and that is to be stable in the soul conscious stage myself and look at others as a soul too.
तो दृष्टि देने का महत्व ये है, जो हमारी पावर है उससे वो कमजोर अगर हो तो वो भी शक्तिशाली बन जाए.
So the meaning of drishti is that when I'm giving drishti, even the other one might be weak, but he or she may get power from it.
या हम अगर कमजोर हैं तो उसकी पावर से मैं शक्तिशाली.
Or if I'm taking drishti and if I have some kind of weakness and I'm not so strong, then I can get power from that soul's drishti.
लेकिन इसके लिए बहुत soul conscious stage में रहना चाहिए.
But it is important to remain in a really good soul conscious stage for that.
जैसे बाबा जब आते हैं ना तो दृष्टि देते हैं पहले सभा को.
When Baba comes, you must have noticed that he gives drishti to the whole gathering.
तो आप लोगों ने शायद अनुभव किया हो, ऐसे लगता है जैसे कोई ज्ञान सूर्य आया है और ऐसे उसकी लाइट है ऐसे सभा पर फैल रही है.
So I'm sure you must have experienced like there's a sun of knowledge that has come and is going everywhere and spreading that strong light.
तो बाबा की दृष्टि देने का अर्थ क्या है? कि बाबा देख रहा है कि बच्चों के अंदर कोई कमी कमजोरी हो तो समाप्त हो जाए.
So
बाबा की शक्ति से वो पावरफुल बने.
What is the reason for Baba giving drishti? Baba is just looking at what the souls want and what soul is a weak in something, he wants to fulfill that soul with that power.
तो हम भी बाबा के जैसा बिल्कुल लाइट माइट बन करके जब किसी को देखें तो प्रकृति में आत्मा को देखें और लाइट दे सकते हैं.
So like Baba, we also become light and might and just look at the center of forehead of that soul and give that might to that soul.
जिससे उसका बॉडी भूल जाए, देह मान से निकल.
So that soul also becomes free from the consciousness of the body.
Okay. आप पूछ रहे थे. अगर आप ये बोल रहे थे कि लेजर के जैसा एक्सपेरिमेंट करने का बोल रहे थे ना, थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं उसके ऊपर, द लेजर ऑन द सेल्फ एज वेल एज रिलेशंस के ऊपर भी, ये दोनों को थोड़ा डिटेल में बताइएगा. एक और दूसरा चीज है, ये प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं कुछ दिन के बाद उसका रिजल्ट्स या कुछ का प्रोग्रेस नहीं देख पाते तो डीला हो जाता है प्रैक्टिस, तो इसके लिए आप कुछ सजेस्ट करिएगा.
सो ही इज सेइंग अबाउट लेजर, राजूभा हैज जस्ट मेंशन्ड दैट जस्ट एज यू नो व्हेन द मैग्नीफाइंग ग्लासेस इन इट्स पोजीशन इट एक्ट्स लाइक अ लेजर और वी बर्न सिकनेसेस विद लेजर. सो ही इज आस्किंग that can you tell us a bit more about that, how to use that laser to finish off weaknesses in ourselves or relationships. And the second part is that, okay, we practice this, like he said, you know, for 1 month you do it, we practice it, but when we don't see any strong solid results and no progress, then we become slack and we don't want to do it. So what shall we do at that time? Yes,
isme aisa hai ki रिजल्ट की वास्तव में मुझे इच्छा नहीं रखनी चाहिए.
एक्चुअली आई शुड नॉट इवन हैव एनी डिजायर ऑफ रिजल्ट.
रिजल्ट निकली ही है, शुभ भावना की रिजल्ट होती ही है.
देयर इज डेफिनेटली अ रिजल्ट ऑफ प्योर विशेस एंड गुड फीलिंग्स, शुभ भावना.
कोई बहुत कड़ा हिसाब किताब होता है, इसमें टाइम लग सकता है.
एंड इट्स पॉसिबल दैट इफ इट्स अ वेरी स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम.
आपको हम 15 दिन योग किया, 21 दिन योग किया, फिर भी ये नहीं चेंज हुआ, इससे तो क्यों योग करें? योग करने से तो आपको अपना निजी फायदा है.
सो यू नो यू माइट थिंक, ओह आई हैड मेडिटेशन, स्पेशल मेडिटेशन फॉर 15 डेज 21 डेज एंड नथिंग हैपेंड. वेल एटलीस्ट यू आर डूइंग योग, इट्स गुड फॉर यू.
बाबा कहता है जैसे वो अपनी कमजोरी में, अपने बिघन डालने में पक्का है, मजबूत है, ऐसे तुम उसको शुभ भावना देने में मजबूत रहो.
So Baba says, just as the other soul is really firm and determined to give you sorrow and trouble you, you also become strong and determined to give him that power and peace.
तो time fix करके कोई ऐसा नहीं 21 दिन में ही बदल जाएगा, अपेक्षा नहीं रखो, लेकिन बदलना ही है. कभी भी बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा. मेरी शुभ भावना इसके पर सदा रहे.
So don't have this expectation or keep a date that by until this date he should transform, he should take.
Baba
change. Don't have expectation. You just have the thought that this will definitely have to happen.
Baba abhi dekho 44 saal se avyakt roop mein hamari palna kar raha hai. Kitni shikshaen di hum badle hain.
So Bab Dada has been giving us teaching since the past 74 years at least. Have we changed?
Kai baar Baba ko hum sochte hain, Baba pichle saal bhi keh raha tha bacche vyarth sankalp nahi karo. 77 में भी यही बात कही, व्यर्थ संकल्प का मुझे दान दे दो. आज तक भी व्यर्थ संकल्प पर हमने जीत नहीं पाई. थका नहीं बाबा कभी भी.
वी से यू नो इन 77 आल्सो बाबा सेड बी फ्री फ्रॉम वेस्ट थॉट्स. लास्ट ईयर अगेन ही सेड बी फ्रॉम वेस्ट थॉट्स. ही ऑलवेज सेज बी फ्रॉम वेस्ट थॉट्स.
बाबा की शुभ भावनाएं हमारे पर सदा ही हैं.
But Baba's shubhavna, his good, pure wishes and feelings for us are always on us.
और बाबा जानता भी है इन्हीं को मैंने बनाया था और इनको बनाऊंगा.
And Baba knows that I had made these souls in such way and I am going to do it again.
तो हम भी क्यों थकें किसी से?
So why should we get tired of doing all this?
हमारे भी संस्कार मान लो कोई ऐसे कड़े हैं, नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमको बनना तो है ना देवता, इसलिए तुम बाबा के बने हैं.
ओके, आई माइट हैव सम स्ट्रॉन्ग संस्कार विच इज नॉट गोइंग अवे, बट व्हाई डू आई गेट फेड अप एंड गिव अप? आई एम द डेटी सोल एंड आई हैव टू बिकम दैट अगेन एनीवे.
किसी दिन तील लगेगा, वो संस्कार अपने आप समाप्त हो जाएगा.
सो मे बी दैट एरो विल हिट इवन दैट अदर पर्सन एट सम टाइम एंड स्ट्राइक इन द राइट प्लेस एंड ही विल चेंज.
तो थकावट नहीं आनी चाहिए इसमें.
सो टायर्डनेस शुड नॉट कम इन दिस.
करते रहो बाबा, चलते रहो.
बाबा सेज कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन मूविंग.
तो सफलता तो जन्म से अधिकार है, आज नहीं तो कल मिलेगी.
सो सक्सेस इज माय बर्थ राइट, इफ नॉट टुडे टुमारो.
ठीक है, तो इसलिए कोई भी प्रकार के संकल्प में नहीं आए तो रिजल्ट तो मिलती नहीं. हम कर रहे हैं तो हमको तो मिल रहा है, रिजल्ट मिले.
सो नेवर हैव दिस थॉट दैट आई एम डूइंग दिस एंड देयर इज नो रिजल्ट. आई एम डूइंग इट. Right, so I am going to get it anyway.
Okay.
Anyone else? Yes, our brother came first. Sorry, 1 minute. He was there first. Sorry, brother.
Om Shanti. अभी जस्ट आपने बताया कि प्रकृति के पांचों तत्वों को इमर्ज करना है. बाबा ने भी इमर्ज किया तो एग्जांपल दिया. हम लोग को इमर्ज करने के लिए क्या करना है, जरा थोड़ा विस्तार करके बताना.
राजू भाई हैज जस्ट सेड दैट वी हैव टू सर्व द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, 5 एलिमेंट्स, एंड वी हैव टू इमर्ज देम व्हेन वी गिव देम समथिंग और डोनेट. सो ही वांट्स टू नो प्रैक्टिकली कैन यू एलैबोरेट ऑन हाउ टू डू इट.
ऐसा है कि हम सब जानते हैं, जैसे आप पानी पीते हो, आप अगर उसको 1 मिनट बहुत प्यार से सकाश दे करके पानी पियेंगे तो आपके अच्छे वाइब्रेशन उस जल को शुद्ध करेंगे. ये तो मानते हैं ना.
फॉर एग्जाम्पल यू ड्रिंक वाटर, राइट? नाउ व्हेन यू ड्रिंक वाटर यू लुक एट इट एंड यू सेंड वेरी गुड थॉट्स, द वाइब्रेशंस विल गो इन दैट वाटर एंड यू विल ड्रिंक दैट वाटर.
तो ये जल देवता की जैसे, वो देवता हमारे को शुद्ध कर रहा है. अब रूप कोई देवता का उसका नहीं है, हमने तो एक एग्जाम्पल दिया कि बाबा ने ऐसे दिखाया. लेकिन आप पांचों तत्वों का प्रयोग तो कर रहे हैं. आप धरती पर चलते हैं, पहले धरती पर भक्ति मार्ग के अंदर भारतवासी जब भी खेत पर भी जाते थे तो ऐसे धरती को ऐसे करते थे, ऐसे. ये क्या करते थे? ये उसको सत्कार देते थे, सम्मान देते.
फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ड्रिंकिंग द वॉटर इज नॉट दैट देयर इज अ डेटी देयर इन द वॉटर. बाबा जस्ट यूज द वर्ड डेटी, मीन्स द वन हु इज गिविंग. सो व्हेन वी ड्रिंक विद दैट वाइब्रेशन इट मेक्स अस ऑल्सो क्लीन एंड प्योर इनसाइड. And it has been a long culture and system in India that when people used to do farming, and even now, before they start the farming, the ploughing, they would touch the earth, you know, and touch with their forehead. So it's a sign of respect that they are thanking and they're respecting the earth.
पहले हम भोजन करते थे भक्ति के अंदर, तो पहले जो पहला कौर खाने वाला होता था ना, वो निकाल करके आग को अर्पित करते थे, अग्नि देवता को.
And also it was a sort of a custom and system also that in on the path of devotion, that when we used to start having our meals, the first portion, you know, like you have a chapati, so you break it off. So the first one, we would always give it to fire god, fire deity.
ये सब भक्ति के अंदर जो रसम चली है ये स्थूल बना दी गई, लेकिन ये सूक्ष्म में हम इनको रिस्पेक्ट करें.
So, on the path of devotion, all these have taken on very physical forms or very gross forms. But actually what it means is that we are doing service of these elements.
हमारे पास जो खेती वाले हैं ना, किसान लोग जिनको हम योगिक खेती सिखा रहे हैं, अगर उनके योगिक खेती पर आप जाएंगे तो उनको उनका कहना है कि आप चप्पल पहन के हमारे खेत में नहीं आइए. हमारा ये धरती माँ है, धरती देवी है.
We are having this yogic farming down below, and also there are other farmers who are practicing this yogic farming, and they tell us that do not step on this farm, on this land with your slippers or your shoes, because this is mother for us, this is mother earth.
और वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी बीड़ी पीने वाला, तंबाकू खाने वाला इसके अंदर अलाउ नहीं, आने की।
And they say we will not allow anybody to enter the farm, anyone who smokes or has tobacco or anything.
तो क्या ये जैसे तत्वों की हम लोग प्यार कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ये उसकी सेवा है।
So this is service that we are loving the elements, we are respecting the elements.
ऐसे ही सब तत्वों को इमर्ज करके करना, बाकी कोई स्थूल में दिखावा नहीं, ये अंदर की भावनाएं हैं।
So this is a bhavna inside. It's not that you have to do anything in a gross way. This is just the subtle service that you have to do. This is one example that he gave.
Okay.
Two questions. One is some suggested thoughts to how to give good wish to a group of people who are unable to experience yoga, and sleep is their obstacle. And the other one is, brother was sharing about giving good wish to the spirits who have left the body, and I tried it with mind service, and there was a fear that if I start giving good wish, they will be attracted to me. I was afraid.
So there are two questions she has. One is that, like Rajubhai said, that you know, giving sakash different souls to help them. And she wants to know how, what she can do for those who can't have yoga. Like they have some obstacles, or they can't meditate, or they can't have yoga. That's one question. The second question is that he said that these souls who are wandering, who haven't got a body, we can give them sakash and help. So she said she has been, she tried to do that also, but she's afraid that if she does all that, they might get attracted to her, they might like her and get attracted to her.
ऐसा है, कई ब्राह्मण आत्माएं योग नहीं कर पाती।
There are some Brahmin souls who can't have yoga, can't meditate.
तो हम सब पहले तो बहुत शुभ भावना उस आत्मा के प्रति रखें कि ये बाबा का बच्चा है, ये भी बाबा से अधिकार लेगा, शुभ भावना का दान दें उसको।
So at first we have to have this really deep, good, pure feelings, शुभ भावना for them that this one is also a child of Baba and may he claim his right from Baba.
और दूसरा संघ का रंग लगाएं, अपना संघ दें उसको।
And also give them a company because the company colors.
हम लोग उसकी कमियों में, उसकी कमजोरियों में संघ देते हैं, लेकिन अच्छाई का संघ नहीं देते।
We give them company in their weaknesses and problems. That yes, you have this weakness. Yes, you have this problem. But we don't give them company in their good qualities, in their goodness.
तो जब भी वो हमारे संपर्क में आता है, तो बाबा की कोई बात सुनाए, जिससे उसको अपना अनुभव सुनाए कि मुझे बाबा ने क्या दिया है। मैं अपनी कमजोरी उसको न सुनाऊं, मुझे जो बाबा से मिला है उसको वर्णन करूं, तो उसका योग लगे।
So when such a soul comes in front, not to talk about my weakness that yes, you know, it happens to me also, not that, but to talk either a point of knowledge or some experience that I've had that I've got this from Baba, share that with them.
और दूसरी बात है कि अगर कोई भटकती हुई आत्माओं की सेवा करता है और वो आत्मा उसके तरफ अट्रैक्ट होती है, माना वो खुद कमजोर है, शक्तिशाली नहीं है, उसे वो सेवा करनी नहीं चाहिए, वो सबके लिए नहीं है सेवा।
So the second question was that about helping these wandering souls, and if I am afraid that I help them and they'll get attracted to me and pull to me, it means that I have some weakness. So that kind of person should not do this service because this service is not for everybody.
ये powerful, बहुत शक्तिशाली आत्मा है जिन पर किसी का प्रभाव न पड़े, वही ये सेवा कर सकती है, करनी चाहिए उनको ही।
Only such a soul can do and should do this service. A soul who's completely away from any kind of influence, any kind of power, any kind of effect, a very powerful soul.
हमको अगर हम निर्भय स्थिति में रह सकते हैं, निर्वैर स्थिति में रह सकते हैं, मैं जानता हूँ मेरे पास उपयोगिता है, जो मेरी दृष्टि से आत्मा चेंज होगी, तो हम सकाश दें, नहीं तो उसको सकाश देने की जरूरत।
So if I'm very sure that I am a fearless soul and I'm a soul which has no hatred, dislike, anything but that soul, I am so powerful, then I should do that service even through drishti or my drishti is powerful.
कि हर एक को ये सेवा करने की जरूरत नहीं है, अपने को चेंज करने की सेवा करो, अपने को शक्तिशाली बनाओ.
It's not necessary that all of you should do this service. The first service is to change yourself and to make yourselves powerful.
और अगर कोई सर्विस नहीं है तो बाबा कहता शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो तो अपने आप शांति के प्रकंपन फैलेंगे. देने किसी को जाने की जरूरत नहीं है.
So even if there's no service to do, doesn't matter. You don't have to go anywhere and do something. Baba says if you're just sitting down in a very peaceful stage, the vibrations will spread.
Okay. Om Shanti.
Om Shanti. Yes? Yes, okay. You have the mic. But I have to translate anyway. Yes, okay.
Where should we immerse the soul to whom we want to give vibrations? In the subtle region or in... Over here only.
So when we want to give vibrations to a certain soul, where should we emerge them? Here in this world or in the subtle world?
मैंने बोला आपको पहले ही कोई को ऐसे emerge करने की जरूरत नहीं है.
I already told you beforehand that there's no need to emerge anyone actually.
आप अपनी powerful stage पर स्थित होकर बाबा के साथ बैठो. बाबा को जिसे देना होगा अपने आप देगा.
You just sit in your powerful stage and get connected to Baba, and then Baba will give through you to whoever he has to give or whoever needs.
जिसको स्पेशल आप देना चाहते हैं उसके प्रति रहम इमर्ज करो. बस उन आत्माओं को इमर्ज नहीं करो, उसके प्रति रहम इमर्ज करो.
So if you want to give to certain souls, don't give to them, but just emerge the feeling of mercy to those souls.
Om Shanti.
Om Shanti. Thank you, Rajubhai.
चलो तीन मिनट में बाबा के पास चल के बहुत शक्तिशाली सकाश लो.
सो लेट्स ओके somebody इन द पेरेंट्स रिट्रीट forgot दिस एट द ऑडियो विजुअल काउंटर. इफ यू रिमेम्बर, इफ यू आर हियर प्रेजेंट हियर, प्लीज कलेक्ट इट. एंड नाउ फॉर थ्री मिनट्स वी कैन हैव वेरी वेरी पावरफुल योग एंड रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा.